सो आज हम तीसरे अपने उसमें जाएंगे. हमने पहले देखा था, ये चौथा संडे है मेरा. पहले बार हमने उस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस बात को कहा, मैं हूँ, उस बात को हमने शुरू करा था. उसके बाद फिर हमने इस बात को भी देखा था, पहला जो साफ दावों में साथ पहला दावा कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ. उसके बाद फिर प्रभु ने हमसे कहा अपने वचन में, हमने उसको देखा यौना में, यौना की सीरीज में हम चल रहे हैं. दूसरा दावा हमने देखा था, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ. और आज हम तीसरे दावे में जाना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ. यह सच है. हम बार बार इस बात को देखते चले आ रहे हैं कि यौना का उद्देश्य एक ही उद्देश्य अपने सुसमाचार को लिखने का, कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास लाने के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करें. विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, ये उसका उद्देश्य है सुसमाचार को लिखने का, चाहे उसकी शिक्षाएं हैं, चाहे उसके आश्चर्य कर्म हैं. सो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए ये यौना उसका 10वां अध्याय और पहले पद से लेकर 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा. यौना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पहले पद से लेकर 9 पद तक. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता क्योंकि परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है. परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है. द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़े उसकी आवाज पहचानती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है. जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं आएंगी परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे दूसरे की आवाज नहीं पहचानती. यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझ पाए कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कह रहा है. इसलिए यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं. जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी. द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा. भेड़ों का द्वार मैं हूं. आगे से पढ़ने से पहले केवल मैं एक चित्रण आपके सामने लाना चाहता हूं, और यह बहुत ही जरूरी है इस चित्रण को. क्यों द्वार की आवश्यकता पड़ी है, क्यों द्वार की आवश्यकता पड़ी है? और जब हम इस बात को देखते हैं कि द्वार की आवश्यकता पड़ी, तो इसको आपको समझना है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य के पाप करने के कारण मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था. क्या करा था? अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था. मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया. अब अवश्य था कि अगर परमेश्वर के पुनः उसी संगति में, अब अवश्य था कि परमेश्वर की पुनः उस उपस्थिति में, अब अवश्य था कि परमेश्वर के साथ पुनः उस मेल में मनुष्य आ जाए तो उसको उस द्वार में से प्रवेश करे जो द्वार में होकर के वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सके. अदन की वाटिका में बाहर निकाला गया, अब उसको फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कोई और दूसरा जरिया नहीं है बिना यीशु के, बिना यीशु. और इसको अगर हम जब उत्पत्ति में जाते हैं, उत्पत्ति पहले 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पिछले दिन मैं सीरीज ले चुका हूं, और तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि आदम ने हव्वा का नाम जो रखा वो विश्वास के साथ रखा, और उस विश्वास के साथ रखा कि ये स्त्री के द्वारा परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को पूरा करेगा, पूरा करेगा। जो स्त्री यद्यपि पाप में गिराई गई थी उसके द्वारा जो कुछ भी हुआ था हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। सो अब अवश्य है कि अगर मनुष्य उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो कोई एक द्वार हो जिस द्वार में से भीतर जाकर के वो उसके साथ रह सके, उसके साथ वास कर सके। क्यों? वो परमेश्वर से बाहर निकाल दिया गया था। और इसीलिए जब हम नए नियम में आते हैं हम सारी कहानी को देखते हैं। उस चित्रण को आप याद रखें और इस चित्रण को याद रखते हुए तब आप बाइबल की पूरी जो कहानी है उसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने समय समय में पाप आया, पाप के बाद परमेश्वर ने हम देखते पतन आया, पतन के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से इसराइली इतिहास आया, फिर हम उसके बाद देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की का आना आया यहां पर, और प्रभु यीशु मसीह में होकर किस प्रकार से हमारे उद्धार का क्या नाम से राज खोला गया या द्वार खोला गया, और किस प्रकार से फिर कलीसिया आई, और कलीसिया के बाद अब हम अंत में उस महिमा में प्रवेश करेंगे, और ये उसी चरण में सीमा में चला आ रहा है। अब आइए हम इस 10वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। 10वें अध्याय के पहले पद से लेकर 9 पद तक हम उस विषय को देखते हैं जो द्वार के बारे में, 10वें पद से लेकर आगे हम फिर दूसरे एक विषय को देखते हैं जो हम आगे आने वाले संडे को देखेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि हम दोनों विषयों को एक साथ ले लें, यीशु मसीह के चरवाहा है, यीशु मसीह द्वार है, लेकिन जब मैं बैठकर अध्ययन करने लगा, पढ़ने लगा, विचार करने लगा, तब ऐसा लगा कि दोनों साथ लेना समय के पूरा नहीं होने पाएगा, और इसलिए आज जो हम फोकस करना चाहते हैं, यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम न केवल दावों को देख रहे हैं लेकिन दावों के साथ साथ हम योन्ना के सुसमाचार को समझ रहे हैं, योन्ना सुसमाचार को समझ रहे हैं। इसीलिए जब पिछली बार हमने योन्ना उसके 8वें अध्याय पे देखा था, 8वें अध्याय प्रभु यीशु मसीह का मैं जगत की ज्योति हूं, तो हमने 7वें अध्याय में जाकर देखा था, 7वें अध्याय में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का यदि कोई प्यासा तो मेरे पास आए। आज हम जब 10वें अध्याय में आ रहे हैं तो हम पीछे 9वें अध्याय में जाएंगे, क्यों 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं। 10वें अध्याय में जैसे हम आते हैं आने से पहले, इससे पहले 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में है, और मंदिर में हमने देखा था किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में होकर के वो वचन दे रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो कुछ भी कहा सारी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन जैसे हम 8वें अध्याय के क्या नाम से आगे बढ़ते हैं और 9वें अध्याय में आते हैं, हम 9वें अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करते हैं, और आश्चर्य कर्म क्या करते हैं कि एक अंधे को प्रभु आंखें प्रदान करते हैं, अंधे की चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल आए, 9वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल करके ये मनुष्य उनके सामने मिलता है जो जन्म का अंधा है, प्रभु यीशु मसीह को चंगाई देते हैं, और अब उसकी चंगाई को लेकर के एक वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है, चंगाई को लेकर। और कौन वाद विवाद कर रहे हैं? ये वाद विवाद करने वाले फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ना तो समझ नहीं पा रहे हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को जानने पा रहे हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को मानने पा रहे हैं। ना तो उन्होंने यीशु मसीह को जाना है ना उन्होंने माना है, और यीशु मसीह के चंगाई के कार्य के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। और तब उसके बाद उन्होंने सारी बातों कही। तो जब 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस चीज को देख रहे हैं कि ये फरीसी लोग, ये शास्त्री लोग इस अंधे की चंगाई के कारण इसके व्याकुल हैं, तो प्रभु ने कहा स्पष्ट उसका, भैया तुम अंधे हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं देख पा रहे, तुम सोचते तो हो कि तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन फिर भी तुम उन आंखों से तुम देखने नहीं पा रहे हो कि वास्तव क्या है। और पूरा 9वां अध्याय इसी विषय पर आधारित है। और तब 10वें अध्याय में अब प्रभु यीशु मसीह इनसे बात कर रहे हैं जो ये फरीसी हैं, शास्त्री हैं, जो अपने आप को क्या नाम से धर्म के ठेकेदार समझते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ व्यवस्था के द्वारा ही तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हो, व्यवस्था को सिखाने वाले, समझाने वाले, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर केवल एक रीति विधि है जिसको पूरा कर देना, और प्रभु कहता है ये सब कुछ बेकार, ऐसा नहीं होगा। और नवे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह दया दिखा रहे हैं, दया के द्वारा उस अंधे को आंखें दे रहे हैं जो अंधा देख रहा है, और इसीलिए वो कहता है 34 पद में, 9 अध्याय के 34 पद में, उन्होंने उत्तर देते उसे कहा तू तो पापों में ही जन्मा है और क्या तू हमें सिखाने आया है, और उन्होंने उसे निकाल कर बाहर कर दिया इस व्यक्ति को। 35 पद से तब प्रभु यीशु मसीह अंधापन की बातें कर रहे हैं, यीशु ने सुना उन्होंने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, तो उससे मिलकर उसने कहा, यीशु ने कहा क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है, उसने उत्तर देते हुए कहा वो कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं, यीशु ने उसे कहा तूने उसे देखा भी है और वही है जो अभी तेरे से बातें कर रहा है, और उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, ये अंधे की आंखें खुल गई। बहुत सुंदर चित्रण है, माता पिता से पूछा, लोगों से पूछा क्या सह क्या जन्म दान, माता पिता ने तुम उससे जाके पूछ लो, सियाना है वो बता देगा तुमको, और ये अंधा एक साक्षी दे रहा है बार बार कह रहा है, और यहां पर यीशु के पास आकर कहता है प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैंने जान लिया है तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, तूने मेरी आंखों खोल दिया है। और 39 पद में तब यीशु ने कहा मैं संसार में न्याय के लिए आया हूं, जो कोई नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो देखते हैं वो अंधे, किसके लिए कह रहे हैं? ये फरीसी शास्त्री सदुकी इनके लिए कह रहे हैं, तुम कहते तो तुम देख रहे हो लेकिन वास्तव में तुम अंधे हो, और उस अंधे होने के कारण तुम उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो जहां तुम्हें प्रवेश करना चाहिए, तुम परमेश्वर के राज से वंचित हो, तुम अभी भी वही लोग हो जो बाहर निकाल दिए गए, अर्थात पाप में सारी चीजें, तुम सोच रहे हो तुम धर्मी हो, तुम धार्मिकता के साथ जीवन करो, व्यवस्था को मान लो, लेकिन नहीं है, तुम अभी भी अंधे हो। और प्रभु यीशु मसीह ने तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा फरीसियों में से कुछ उसके साथ थे, ये बातें सुनकर उन्होंने उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप ना होता, अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना है। हे फरीसियों, तुमने अपना अंधापन स्वीकार नहीं करा, यह व्यक्ति अंधा था और अंधा होते क्या उसको जानता था कि मैं अंधा हूं, और उसने मेरे पास आकर चंगाई को प्राप्त किया, उसने विश्वास किया, उसको चंगाई मिली, उसको जीवन मिला, लेकिन तुम अपने आप को कहते हो कि हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वास्तविकता में तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम अंधे हो। और तब इस बात को लेकर के तब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते 10वें अध्याय में, और तब वो क्या कहते हैं 10वें अध्याय के पहले पद में, बार बार मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा बोझ है कि यौना के सुसमाचार को हम समझ सके अच्छी तरह से प्रभु क्या कर रहा है, और इसीलिए हर उसके क्लेम के साथ दावे साथ हम पहले अध्याय को जरूर देखते हैं। 10वें अध्याय में यीशु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, अब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार यहां द्वार का नाम लिया, अगर तुम्हें भेड़शाला में प्रवेश करना है तो तुम्हें द्वार से होकर जाना है। हे फरीसियों, हे शास्त्री, तुम्हें इस द्वार को पहचानना है, द्वार में से भीतर से होकर जाना है, और कहीं से तुम नहीं आ सकते, लांग फांग करके इधर से उधर के तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी रीति विधि, तुम्हारी धार्मिकता, ये सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हें द्वार को पहचानना है, तुम्हें द्वार को जानना है, तुम्हें द्वार को अपनाना है, और उस द्वार में से तुम्हें भीतर जाना है, तभी तुम उसके राज में प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा नहीं करने पाओगे। और तब प्रभु यीशु मसीह इस चीज को आगे समझाते बोलते हैं, और तब कहते हैं आगे चल करके द्वार में प्रवेश करता है परंतु किसी दूसरी ओर चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। क्या कहना चाह रहे हैं? द्वार के अलावा कोई भी किसी तरह से प्रवेश नहीं करता, और आज कितने हैं जो दीवालों को लांग करके सोच रहे हैं कि हम प्रवेश कर लेंगे। क्या मतलब दीवालों को लांग करना? अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं दीवार हूं तो बड़ा आसानी से लोग पार कर लेते, अगर ऊंचा होता तो एक कंधे पे दूसरे को, दूसरे कंधे तीसरे बैठ के पार कर लेते, कोई ना कोई साधन बनाते। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं समुद्र हूं तो उसको भी पार कर लेते, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह कहते मैं द्वार हूं तो सीमित है, उसी में से होके जाना, तब इधर उधर से आप नहीं आ सकते। दुनिया क्या कर रही है? फरीसी भी करते, शास्त्री भी करते, आज दुनिया भी यही कर रही है। कहीं इधर से पाना चाह रही है कि इधर पाना चाह रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा। उनके जो गुरु रहे, महात्मा रहे, जो कुछ भी रहे, आप जानते हैं क्या क्या उन्होंने, लेकिन वो ना खुद प्रवेश कर सके ना मनुष्य को प्रवेश करा सके। उनको स्वयं उद्धार का अनुभव नहीं मिला, दूसरों को उद्धार का अनुभव कैसे दिलाएंगे? और ये वास्ता है, इसको जाना है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। तीसरे पद में द्वारपाल उनके लिए द्वार खोलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पद है जिसको मुझे और आपको समझना है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है जो भेड़ों की आवाज सुनता है। द्वारपाल जब वो यहां पर कह रहा है द्वार, क्या मतलब है? दरवाजा है, दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति द्वारपाल है, दरवाजा यीशु मसीह है, लेकिन द्वारपाल है। जैसे भेड़ आना चाहती है वो द्वारपाल दरवाजा खोल रहा है। ये कौन है द्वारपाल? प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो डोर है, प्रभु यीशु मसीह दरवाजा है, तो द्वारपाल कौन है? और ये द्वारपाल, परमेश्वर ने बड़ी अपनी अद्भुत योजना में इस द्वारपाल को रखा है। जब परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं तो यीशु मसीह से आने से पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता था, और जिसने उस द्वारपाल का कार्य किया, यूहन्ना, आइए मेरे साथ जरा मत्ती में आइए, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा और ये बहुत जरूरी है इसको समझना मेरे प्रियो। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने द्वारपाल की मुझे और आपको दी है, इस बात को समझना है। मत्ती उसका तीसरा अध्याय, और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, मैं बपतिस्मा देना सुसमाचार प्रचार कर रहा है। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया और वो ये कहकर प्रचार क्या करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। छठे पद में, जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार करा, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। आठवें पद में, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। क्या मतलब है? ये द्वारपाल कौन है? ये द्वारपाल वो है जो परमेश्वर के सुसमाचार की उद्घोषणा करता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को कि विश्वास करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। उस समय द्वारपाल का काम परमेश्वर ने सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ में दिया था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले आकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया। आप मत्ती में देखिए, मरकुस में देखिए, लूका में देखिए, तीनों सुसमाचार जहां पर आप देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देना प्रचार कर रहा है। जब यीशु मसीह भी वही प्रचार करते हैं, प्रेतों में भी प्रचार किया। क्या मतलब है? सुसमाचार वो द्वारपाल है जो मनुष्य को परमेश्वर के राज में या प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे में प्रवेश करने में सहायक होता है। तो द्वारपाल सुसमाचार का प्रचारक और सुसमाचार है, इस बात को समझ। बिना सुसमाचार प्रचार के मनुष्य उस द्वार को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, और जब उस द्वार को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, वो कैसे विश्वास करेगा? और अगर विश्वास नहीं आएगा तो कैसे प्रवेश करेगा? और परमेश्वर के वचन में इसीलिए कहता है, द्वारपाल उसके लिए, किसके लिए है? उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़े उसकी आवाज पहचानती है। किसके लिए द्वार खोलता है? द्वार यीशु मसीह है, द्वारपाल बाहर खड़ा हुआ है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और सुसमाचार यीशु मसीह। अब सुसमाचार का प्रतिकृति क्या है? यीशु द्वार है, वो खुलता है और भेड़े सुन करके उसके अंदर आती हैं, उसके अंदर आती हैं। सुसमाचार का रिस्पॉन्स, प्रतिउत्तर मनुष्य के जीवन में उस द्वार से अंदर जाने में सहायक होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए बिना सुसमाचार के, सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मैं बार बार उसको दोहराता हूं, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय 22-23 पद। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए संसार में मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया। उसने केवल रीति विधि नहीं बनाई, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कर लो, हो जाएगा। नहीं नहीं, करना तो क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, वो सुसमाचार। और जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो सबसे पहली बात वो यहां पर कह रहा है, द्वारपाल उस देव उसके लिए खुद द्वार खुलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। क्या हो, भेड़ें अंदर आई हैं, अब उनको बाहर ले जा रहा है। अभी हम बाद में देखेंगे इसको, बाहर और अंदर, अंदर और बाहर आने का मतलब क्या है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। अब क्या मतलब हो गया, अदन की वाटिका में क्या था? अदन की वाटिका में जब तक पाप नहीं आया था, आदम हवा परमेश्वर की आवाज को पहचानते थे। जब परमेश्वर शाम को अदन की वाटिका में आता था, वो उस आवाज देता था और तब उसके बाद वे निकलते थे और आदम हवा परमेश्वर से संगति करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पाप आ गया, तब भी उन्होंने आवाज को पहचाना, लेकिन अब क्या आ गया था? आवाज को पहचानने के बाद जब परमेश्वर ने आवाज दी तो क्या हो गया, वो डर गए और अपने आप को अब छिपा लिया। अब वे परमेश्वर के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर के नजदीक आने तैयार नहीं थे, अब अपने आप को छिपाने लगे क्योंकि पाप ने उनके अंदर भय उत्पन्न कर दिया था, मेरे प्रियो। लेकिन अब ये भेड़ जो परमेश्वर पुनः उस दौर के अंदर आ चुकी हैं, अब उसके आवाज को पहचानती हैं, उसके साथ संगति चाहती हैं, उसके साथ मेल चाहती हैं, उसके साथ प्रेम चाहती हैं, उसकी उपस्थिति को चाहती हैं, अब उनके साथ पहचानती हैं। फर्क है मेरे प्रियो, ये द्वार जो यीशु द्वार है वो अन्य द्वार के समान नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते जाके कुछ चीजों को देखेंगे हम, और वे किसी दूसरे के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज को नहीं पहचानती। अब जब यीशु को जान लिया, जब यीशु को पहचान लिया, अब वो दूसरे पीछे नहीं जाएंगे। जब तक यीशु को नहीं जाना है, जब तक यीशु को नहीं पहचाना, इसने आवाज दी उधर चले गए, उसने आवाज दी उधर चले गए, उसने आवाज दी उधर चले गए। लेकिन जब यीशु को पहचान लिया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक यीशु, और मेरे प्रियो ये आपको सोचना है, आप यहां पर हैं परमेश्वर के भवन में बैठे हुए, क्या आप सच में आपने यीशु को पहचाना है? क्या आपने सच में यीशु को जाना है? चर्च में तो ठीक है, यीशु को जाना है, बाहर जा रहे तो कहीं आ जा रहे हैं, कहीं इस गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं उस गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं उस गुरु पर जा रहे हैं, कहीं इस गुरु के पास जा रहे हैं। कहीं समस्या आ गई, चलो किसे पूछ ले, कहीं कोई बाबा, वहां फलाना बाबा वहां ही कर देगा, उसके पास वो दवाई दिला देगा, चलो यार उसके यहां चलो, ऐसे नहीं। नहीं, अगर यीशु को पहचान लिया है तो यीशु के अलावा किसी की आवाज हमें नहीं सुननी है। बाकी सारे आवाज हमारे जीवन के, हमारे कानों में हमें खड़खड़ाएंगी, हमें चुभने लगेंगी, लेकिन यीशु को जान लिया तो उसके अलावा और किसी की आवाज नहीं। पर अगर यीशु को आपने नहीं जाना है, बाहर निकलेंगे, अरे वहां चले जाओ, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चले जाओ, वो हीलर आया है, बहुत बड़ा हीलर है। आज लोग हीलरों के पीछे भागते चले आ रहे हैं, हीलर उनको भगाते चले रहे, वो भागते चले रहे, कभी वहां बुला रहे हैं, कभी वहां बुला रहे हैं, कभी वहां बुला रहे हैं, कभी वहां बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं दिल्ली में एक बार था काफी समय पहले, और वहां पर एक बहुत बड़ी हीलिंग मीटिंग थी, हो रही थी, उनका नाम सुना था, मैं नाम लूंगा तो आप भी उनको नाम को जानते होंगे। तो जब चूंकि मुझे रुकना था वहां दिल्ली में, शाम मेरी खाली थी, मैंने ठीक है इस मीटिंग के बारे में सुना, जाके मैं देखता हूं, मैं गया वहां, बहुत बड़ी हीलिंग मीटिंग है, खूब खूब गाना हो, जो कुछ होना था। बाद में उस मीटिंग में चंगाई का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, ये चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, ऐसा चंगा हो जाएगा। बाद में लास्ट में प्लास्टिक की बाल्टियों को लोगों के हाथ में भेजा गया पैसा जमा करने के लिए। अरे तुम विश्वास करते हो वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिला सकता है, तो विश्वास नहीं करते कि वही परमेश्वर तुम्हारी आस्था को पूरा करता है? तब क्यों नहीं जाते हो सामने, वो कटोरों को फेंक में भेज रहे हो, भीख मंगवा रहे हो, कहां है वो विश्वास? मुझे और आपको सचेत रहना है इन अंतिम दिनों में, कलीसिया को जागृत रहना, समझदार रहना, आपको यीशु की आवाज को पहचानना, जानना है मेरे प्रियो, बरमाए में नहीं आना है। कितना आपके और मेरे कान परमेश्वर की आवाज के प्रति ट्यून है, कितना अधिक हम उसकी आवाज को, कोई भी काम करते हैं हम सोचते हैं, पहले बैठते हैं, पूछते हैं, प्रभु क्या आप चाहते हैं, ये कितने बार, क्यों भटक रहे हैं? परिवार में शादी का मामला है, नौकरी का मामला है, कुछ और मामला है, त्योहारों का मामला है, ये त्यौहार तो उधर चले जाए, वो त्यौहार उधर चले जाए, वह त्यौहार उधर चले जाए, उसके यहां उधर, सब कुछ करने की तैयारत है, क्यों क्यों नहीं हम अपने आप को संसार में केवल प्रभु की आवाज के साथ अपने आप को रखने पाते हैं? यहां कहता हूं पहचानती हैं, क्या मेरे और आपके सामने प्रश्न है। दूसरी बात आगे चलकर छठे पद में यीशु ने उन्हें दृष्टांत कहा, पर वे नहीं समझ पाए कि वे क्या जो हम कह रहे हैं। इसलिए सातवां पद में, इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, उनसे किन से यीशु ने, इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, उनसे कौन है ये, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये तुमसे कौन है, उनसे तुमसे ये कौन है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, ये वे लोग हैं जो फरीसी शास्त्री यीशु के कार्य को देखकर उंगली उठा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अंधे की चंगाई पर खुश नहीं है। उनको ये मतलब नहीं कि अंधे ने चंगाई पा ली है, इसका जीवन बच गया है, ये जीवन बच करके देखने लगा है, उसको उनको इस बात की चिंता नहीं है। उनको चिंता यह है कि सबत के दिन में भी यीशु ने चंगाई दिया। और मेरे प्रिय, आज स्थिति क्या है, लोग दूसरे के दुख से इतना परेशान नहीं होते जितना दूसरे के सुख से परेशान होते हैं। साधारण रहिए, ये लोग इसी तरह थे, ये लोग इसी तरह थे। आप शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, रोज बीबी को मारेंगे, बीबी को घर से निकालेंगे, मोहल्ले वाले शांत रहेंगे, अरे इनका मामला है। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आप प्रेम से रहने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, आप जुआ खेलना बंद कर देंगे, शराब पीना बंद कर देंगे, सारे पड़ोसी परेशान होने लगेंगे। उनको यह मतलब नहीं कि आपका घर सुधर रहा है, अरे क्या हुआ, चर्च जाने लगे, अरे बाप रे बाप, सबसे बड़ा पाप कर दिया। जब तक लड़ रहे थे, मर रहे थे, कंगाल थे, पाप कर रहे थे, सब कुछ सड़ रहे थे, तब तक उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उनके जीवन प्रभु ने निर्माण करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, परिवार को संभालना शुरू कर दिया, परिवार में गाने की आवाज आने लगी, शांति आ गई, प्रेम आ गया, मेल आ गया, पति पत्नी का झगड़ा दूर हो गया, तब बगल वाले झगड़ा मिले। इस दुनिया की सजा है, ये वो लोग हैं। और इसी लोग कहता है प्रभु ने उनसे, ये उनसे किन से, उनसे उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम जान लो, संसार के लोगों, व्यवस्था के पर घमंड करने वाले लोगों, रीति विधि को मानने वाले घमंड के लोगों, दुनिया को भड़माने वाले लोगों, दूसरों की दुख और परेशान में चिंता ना करने वाले लोगों, तुम मान जान लो द्वार में हूं। यीशु ने कहा द्वार में, भेड़ों का द्वार में हूं, किसी और के द्वारा नहीं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है यौन प्रेत काम उसके 4:12 पद में, इस स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये शब्द प्रभु ने प्रेम से नहीं कहे थे, ये शब्द प्रभु ने बड़े अधिकार के साथ दृढ़ता से कहे थे। और उनको, उन फरीसी और शास्त्री और सारे लोगों को जो मसीह के विरोध थे, यीशु मसीह के विरोध थे, उसके सुसमाचार के विरोध थे, उनको लताड़ते हुए कहता, तुम जान लो कि मैं द्वार हूं। और मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जाना है, यीशु द्वार है, यीशु द्वार है। और तब आगे कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, और परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। सेंटेंस को ध्यान रखिए, जो काल है यहां पर, थे शब्द नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल है, हैं जो आए थे लेकिन हैं, मतलब जो वो लोग जो इस मुझसे पहले आ चुके हैं और जो अभी भी हैं, वे सब जो यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं मानते, यीशु को नहीं पहचानते और दुनिया की रीति विधियों को लाते सामने, वे सब तुम्हारी हानि चाहते हैं। किसको किसी की आत्मा की चिंता है? जितने बाबा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठते हैं, कौन उसमें से एक है जो कह सकता है कि तुम्हारे पाप से छुटकारा ये दे देगा? रुमाल ले जाओ, फूल ले जाओ, केले खा लो तो ये खिला दो, ये आज क्रिश्चियन भी कर रहे हैं। पानी की बोतल ले जाओ, रुमाल ले जाओ, ये क्रिश्चियन भी कर रहे हैं। साधन रही है, अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पर पानी की बोतल यीशु के नाम से बेची जाती है, वो यही लोग हैं जिनसे प्रभु कह रहा है तुम्हें जानना है। उनके पीछे मत भागिए, परमेश्वर न्याय करेगा। सबसे बड़ी आवश्यकता पापों की क्षमा की आवश्यकता है, सबसे बड़ी आस्था उद्धार की आस्था है, सबसे बड़ी आस्था अनंत जीवन की आस्था है। यह मतलब नहीं कि आप डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए ना जाओ, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन भ्रमित मत होइए। तब उसने कहा आगे चल करके, जितने मुझसे पहले आए वैसे चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने इनकी ना सुनी, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा। बार बार ने बार बार, अब ये लोग कौन लोग थे, ये लोग यीशु मसीह को बार बार सता रहे थे। अगर आप योना में देखें, समय नहीं है, योना 5 अध्याय उसका 16 पद, योना 5 अध्याय उसका 18 पद, 7 अध्याय 1 पद, बार बार ये लोग होते जो यीशु को मार डालना चाहते थे, यीशु को सता रहे थे, ये सब कुछ थे कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इनके बारे में मत्ती उसके 23 अध्याय में बहुत अच्छी से समझाया था। मत्ती 23 अध्याय में उनको पाखंडी कहा, उनको दुष्ट कहा, घर में जाके पढ़ेगा मत्ती उसके 23 अध्याय, जिनके बारे में साफ प्रभु ने कहा ये लोग वो थे जिनको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी रीति से डांट लगाई, उनको परमेश्वर ने अंधे अगुए कहा, अंधे अगुए कहा। और तब बाद कहते हैं मैं द्वार हूं, जो भी यीशु पास आता है, तो एक पदों को देखेंगे, यौना उसका 6 अध्याय, यौना 6 अध्याय उसका 35 पद, पिछली बार भी हमने पढ़ा था, पिछली बार यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा, जो मेरे पास आता है। 6:37, वो सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निश्चय कभी ना निकालूंगा, जो मेरे पास आएगा। 44 पद, 44, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने उसे भेजा है अपने पास खींच कर ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा। यीशु मुझे और आपको अपने पास बुलाता है, यीशु द्वार है, लेकिन उस द्वार में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? इसीलिए मत्ती उसके 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों का चित्रण दिया है। चौड़ा मार्ग है जो कहां ले आता है, नरक को ले आता है, सकरा मार्ग है जो हमें जीवन में प्रवेश कराता है। उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें सकरे मार्ग से होकर जाना है। चौड़ा मार्ग का मतलब क्या है, चौड़ा मार्ग का मतलब क्या है, जिस मार्ग में हम बड़े आसानी से दौड़ सकते हैं, दुनिया के सारे ऐश और मस्ती मना सकते हैं, जो कुछ भी होते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको जो भी दूत कह दीजिए उन्होंने उसको ले लिया और ले गए। तो 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा इधर था, एक दरवाजा इधर था। एक दरवाजे के सामने आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा ऐड इधर भी लगा था और इधर भी लगा था, लेकिन जो इस दरवाजे में जो ऐड लगा था बड़ा भारी पोस्टर था, उसमें लगा था, दिखा हुआ था, चित्र बने थे बहुत, और उसमें क्या चित्र बने थे, डांस हो रहा है और क्या नाम से क्या बोलते हैं ड्रिंक कर रहे हैं, लड़के नाच रहे हैं, तमाशा हो रहा है, मौज मस्ती हो रही है, सब खूब बड़ा बड़ा। और दूसरा जो था वो बहुत ही साधारण सा दिखाई दे रहा था, बहुत ही साधारण था, उसमें कोई ऐसी मौज मस्ती नहीं थी, साधारण सा। तो ये जो दूत थे उन्होंने कहा भैया इसको इसमें जाओगे या इसमें जाओगे? उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। नीचे थे तो वहां पर पास्टर भी कहते थे तुम्हें ये नहीं करना है, एल्डर्स भी कहते तो भी नहीं करना है, माता पिता भी कहते थे नहीं। चलो अब कौन देगा, आप तो आ गए यहां मस्जिद। तो क्या कहने लगा मैं भैया मैं तो इधर इसमें जाऊंगा। तो जैसे उसको लेकर गए तो देखा जैसे आगे बढ़ा, गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ा, काले काले कपड़े पहने लोग खड़े होते, और जैसे वहां गए उन्होंने एकदम से उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया तो चिल्लाने लगा काले जा रहे काले जा रहे काले जा, मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। कहने लगे तब तुमने तो बाहर वो इतना दिखाया था, भैया बाहर एडवर्टाइजमेंट था, वो बाहर ऐड था, अंदर तो कुछ और है। और आज कितने लोग इस ऐड के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, भटक जा रहे हैं। हीलिंग्स मीटिंग का ऐड है, आश्चर्यक्रमों का ऐड है, तो और आपके लिए ये करना है, पैसे कमाने का ऐड है, धंधा करने का ऐड है। अरे 2 दिन में ऐसे जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह इनको सिखाते हुए इनको इसी रीति बहुत ताड़ना के साथ बोलते हैं,
तो सच है कि हमें देख। तब उसके बाद क्या कहता वो, द्वार में हूं, नौ पद में, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है। तीन चीजें देखिए, यदि मेरे द्वारा कोई प्रवेश करता है, पहली बात क्या करेगा वो, पहली बात क्या चीज पाएगा, क्या पाएगा, जोर से बोली, क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। सबसे पहली बात उद्धार पाएगा। दूसरी बात क्या है, भीतर और बाहर आया जाया करेगा। क्या मतलब है भीतर और बाहर आने जाने का, क्या मतलब है भीतर और बाहर आने जाने का? जब हम परमेश्वर ने जब यूहन्ना उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं तो पहले यूहन्ना इस बात को लिखते हुए इस बात को कह रहा है, इस बात को उसने कहा कि वो चारक पाएगा, ये करेगा करेगा। जब हम भीतर की बात करते हैं तो हमारा यीशु मसीह द्वार है, वो हमारा चरवाहा है, जिसके बारे में हम आगे कल देखेंगे आगे इतवार में, लेकिन वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें भीतर प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है। जब भेड़े, ध्यान दीजिएगा, भेड़े क्या होती है, भेड़े जाती है या जानवर जाते हैं दिन में चारा खाने के लिए बाहर जाती है, फिर आती है, जब रात में आती है वो सारा दरवाजा बंद होता है और अंदर वे सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षा का स्थान है, विश्राम का स्थान है, भरपूरी का स्थान है। उसके भीतर रहने में, उस द्वार के भीतर जाने में परमेश्वर के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है, परमेश्वर द्वारा हमें संतुष्टि मिलती है, परमेश्वर के द्वारा हमें भरपूरी मिलती है। वो सारे जानवरों से, पशुओं से और ऐसी चीजों से, हानियों से वो हमें बचाता है, हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षा में पाए जाते हैं। बाहर ले जाता है, बाहर ले जाने का मतलब क्या है, हमने अभी भजन संहिता उसका 23 अध्याय पढ़ा, भजन 23 में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सोतों के, जल के सोतों के निकट वो मुझे बैठाता है। क्या मतलब है, जब वो मुझे बाहर ले जाता है, मेरी देखभाल करता है, मुझे भोजन प्रदान करता है, मुझे ऐसी नदी के किनारे जाता है जहां पर पानी भी बह रहा है और उसके साथ साथ वो पेड़ भी लगे हुए हैं और वो वहां पर भरपूरी प्रदान करता है। तो क्या हो रहा है, ये चरवाह क्या कर रहा है, ये चरवाह मेरे जीवन की न केवल रक्षा कर रहा है, न केवल मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन मेरे जीवन की बढ़ोतरी के लिए मुझे पौष्टिक प्रदान भोजन प्रदान कर रहा है। ऐसे स्थान में जहां चरवाई में वो ले जाता है मेरे प्रिय, जहां चारा मिलता है और उसकी स्थिति में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाई जाती है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी आती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, उसमें हमने प्रवेश किया है, प्रवेश परमेश्वर हमारी बीमारियों में, शत्रुओं में, क्या आक्रमण, कई साज में कठिनाई होती है, हमें जाना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह से अलग और प्रभु यीशु मसीह साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं थे तब बीमारी कठिनाई आती थी, हम अकेले झेलते थे। अब जब प्रभु यीशु मसीह आता है, बीमारी आएंगी, कठिनाई आएंगी, घटी कमी होगी, लेकिन अब प्रभु हमारे साथ होगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा। और इसलिए कहता है कि वो क्या करता है, वो भीतर और बाहर जाएगा और चारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो भीतर बाहर जाएगा, वो चारा पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है, पुनः परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाना। उद्धार का मतलब क्या है, पापों के दंड से छुटकारा पा जाना। उद्धार का मतलब क्या है, अनंत आशा में प्रवेश कर जाना। उद्धार का मतलब क्या है, मरने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहना। यह वो देगा, ये वो द्वारा में देगा मेरे प्रियो, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, और किसी के द्वारा नहीं। और ये परमेश्वर के आरंभ की योजना थी, और इसलिए जब हम इस बात को देखते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मुझे और आपको प्रोत्साहन मिलता है। चारा पाएगा और क्या नाम से परमेश्वर उसका 10 पद से आगे बढ़ेंगे। अब जब हम समाप्ति पे आते हैं, यीशु ने कहा मैं द्वार हूं, तो मुझे और आपको क्या करना है, प्रश्न है, यदि यीशु द्वार है तो मुझे और आपको क्या करना है। पहली बात, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। बिना विश्वास के हम उसे प्रश्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के प्रश्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के परमेश्वर का प्रश्न करना असंभव है, अनहोना है, इंपॉसिबल है। और विश्वास करने वालों को जाना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। और विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। अंधे की वस्तु जिसको हमने नहीं देखा है लेकिन उसका प्रमाण है, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। दूसरा, परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको उद्धार दिया है तो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दे दी है। अब परमेश्वर ने मुझे और आपको द्वारपाल ठहरा दिया है, अर्थात सुसमाचार को सुनाने वाला ठहरा दिया, ताकि दूसरों को भी हम सुसमाचार दें और वे भी उस भेड़शाला में प्रवेश कर सकें। यह ठहरा दिया है। क्या मैं और आप उस द्वारपाल के कार्य को समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं? केवल पास्टर जी का काम नहीं है, केवल एल्डर्स डीकन का काम नहीं, हर एक विश्वासी काम यीशु के सुसमाचार को पहुंचाना। आपके पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कितनी और भी भेड़े हैं जो उसके द्वार में प्रवेश करनी है, और उन भेड़ों को लाने में मेरे प्रयोग आपका हाथ है। किसी प्रभु के सेवक ने कहा है, चरवाहा भेड़ों को जन्म नहीं देता, भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं और चरवाहा उनको परिपक्व करता है, मजबूत करता है। यह काम है चरवाहे का। जब कलीसिया में लोग आते हैं तो प्रभु के सेवकों की जिम्मेदारी होते हैं उनके साथ प्रार्थना करें, उनको वचन दें, उनकी शिक्षा दें, उनका पालन पोषण करें, उनको आत्मीय रीति से बढ़ाएं। लेकिन भेड़ों की काम जिम्मेदारी है कि और भी भेड़ों को लेकर आए। अब उसके कारण ये नहीं कि हम अपने आप को बचा ले, नहीं, ऐसा नहीं, हम भी शामिल हैं, हम भी भेड़ में शामिल हैं। चरवाहे की जिम्मेदारी दी है लेकिन भेड़ भी हम उसकी, उसकी भेड़ है। और इसीलिए पतरस को कहा था तो मेरी भेड़ों को चला, मेरी भेड़ें परमेश्वर की हैं। तीसरी और अंतिम बात, चोर और डाकों से हमें सचेत और सावधान रहना है। अंतिम एक पद पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा, यसकेल उसका तीसरा अध्याय। इसको अगले 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 इतवार भी हम छुएंगे और तब हम देखेंगे। इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, 16-17 पद। 7 दिन के पश्चात ऐसा हुआ कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तो इसराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है, इंग्लिश में वॉचमैन है, वॉचमैन, और यहां पर भी यूहन्ना में भी वही शब्द आया है, वॉचमैन, डोरकीपर। क्या है? जब तू मेरे मुख का वचन सुने तो मेरी ओर से चेतावनी देना, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा तो तू उसे चेतावनी ना दे और तू उसे चेतावनी ना दे या उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से सचेत करने के लिए उसे ना कहे जिससे वो जीवित रहे, तो वो दुष्ट तो अपने अधर्म में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता में अपने कुटिल मार्ग से ना फिरे तो वो अपने अधर्म में मरेगा, परंतु तू अपने आप को बचा लेगा। क्या मतलब है? इस द्वारपाल का कार्य करना, सुसमाचार को पहुंचाना मेरे और आपकी हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को ना चिताएं या ना बताएं, भैया पाप की मंजूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। अगर आप उसको नहीं चिताते हैं, अब चिताना मतलब नहीं हड़काना नहीं है, उस प्रेम में होकर परमेश्वर के वचन को बांटना है, उसको मानो चाहिए क्या मैंने सुन लिया यीशु मसीह के द्वारा, बिना उसके उद्धार नहीं है। अगर हमने नहीं करा तो उसका बदला मुझसे लिया जाएगा, लेकिन अगर हमने कर दिया, उसने आपके सुसमाचार का तिरस्कार किया, उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया, आपने गंभीरता से सुसमाचार बांटा, वचन दिया, प्रार्थना की, प्रभु ने आपके ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी, अब वो नहीं कहने पाएगा कि मैंने सुसमाचार नहीं सुना। मेरे प्रियो, क्या हम उस द्वारपाल के काम को करने की तैयार हैं? क्या हम लोगों को उस दरवाजे को इंट्रोड्यूस, परिचय कराने के तैयार हैं? यीशु मेरा द्वार है, हमारा द्वार है। यदि यीशु आपने उसमें प्रवेश किया है तो प्रभु सहायता करें कि सचमुच में हम उस द्वारपाल के रोल को भी समझ सकें और आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हमें आपकी आवश्यकता की जरूरत है। प्रभु, हमें समझ दें, यदि आज भी यहां पर कोई ऐसा है जिसने आप पर विश्वास नहीं किया, प्रभु आप उसको समझ दें और उसको नाश होने से प्रभु आप बचा लें, वो आपके द्वारा प्रभु आपके सुसमाचार को सुनकर समझकर विश्वास करके आपके द्वारा आप द्वार में प्रवेश कर सके, उद्धार प्राप्त कर ले, आपकी उपस्थिति में के जीवन और चार को प्राप्त कर ले। पिता दया करें। यदि हम में से कोई ऐसा है जिसने विश्वास करने के बाद भी अभी भी हम उस चीज को कह रही रीति समझ नहीं पाए, अभी भी हमारा ध्यान कहीं बाहर लगा हुआ है, प्रभु आप हमें क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, और प्रभु परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचें, हम आपके साथ चल सकें। हर एक विश्वासियों को, हर एक जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आने वाले सप्ताह के लिए हमें से हर एक की आप मदद करें और हम आपकी उपस्थिति में होकर प्रभु जी सप्ते को व्यतीत कर सकें। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमारी आपसे सहभागिता, चाय पीना, बातचीत करना, प्रभु एक दूसरे के लिए आत्मिक आशीष का कारण बने। दया करें। सारा आदर हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।